भारत और कनाडा ने उच्चायुक्तों की बहाली पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच मंगलवार को हुई बातचीत में यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा गए हुए थे। सम्मेलन के इतर भारत और कनाडा के शिखर नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक कर आपसी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और विदेशी दमन जैसे मुद्दों पर सहयोग का वादा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक को महत्वपूर्ण बताया है। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने शिक्षा, कृषि, AI और ऊर्जा क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के अलावा G7 में शामिल हुए कई और नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई। दोनों नेताओं ने भारत और इटली की मित्रता को और मजबूत करने की उम्मीद जताई है। कनाडा, इटली के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ भी मुलाकात की। G7 के मेजबान कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बात की। खालिस्तानी समर्थक हरदीप निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पर मार्क कार्नी ने कहा,
वी हैव हैड अ डिस्कशन द प्राइम मिनिस्टर एंड आई अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग द लॉ एनफोर्समेंट टू लॉ एनफोर्समेंट डायलॉग व्हिच इज नॉट जस्ट डायलॉग कोऑपरेशन डायरेक्टली द इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग ट्रांसनेशनल रिप्रेशन as I noted, including when we met, obviously there is a judicial process that's underway, and I need to be careful about further commentary.
ईरान इसराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत को वहां रहने वाले अपने नागरिकों की चिंता सताने लगी है। लगभग 10,000 भारतीयों के ईरान में होने का अनुमान है। इनमें से अधिकतर छात्र हैं जो पढ़ाई करने के लिए गए हैं। भारत ने इन्हें वापस लाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। ईरान के हवाई मार्ग के बंद होने की वजह से जमीनी रास्ते से पड़ोसी देश आर्मेनिया और फिर वहां से हवाई यात्रा के जरिए भारत लाने के इंतजाम किए गए हैं। 110 छात्रों का पहला जत्था ईरान से आर्मेनिया पहुंच गया है। ये छात्र आज भारत लौट आएंगे। विदेश मंत्रालय ने तेहरान में रह रहे भारतीयों को शहर छोड़ने की सलाह दी है। तेहरान में भारतीय दूतावास भी अपने नागरिकों के संपर्क में बना हुआ है। और अब चर्चा घरेलू राजनीति की, जहां जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। जनगणना में देरी और पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं कराने का आरोप कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर लगाया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहते हैं,
समझदारी से इस देश में अलग अलग सरकारों ने सेंसस कराया है, लेकिन आप सरकार की नीयत देखिए, जहां पे 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होता है सेंसस करने के लिए, वहां सरकार ने 570 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बजट में। जिस काम को करने के लिए आप धनराशि आवंटित नहीं कर रहे हो, जिस काम को करने के लिए आपने मौखिक रूप से हाँ बोल दिया है लेकिन उसकी शुरुआत आप 27 में करना चाह रहे हैं, और जहाँ पर आप कास्ट सेंसस के बारे में पब्लिक में बोल रहे हैं कि हम बात को मान लिए हैं, लेकिन जो औपचारिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो सरकार की कार्रवाई है, उसमें से वो सारा लगभग गायब है।
कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना की सराहना करते हुए सचिन पायलट ने जातीय जनगणना पर कांग्रेस के नजरिए को साफ किया।
जातीय जनगणना का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ व्यक्ति की कास्ट जानना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वो लोग, वो समुदाय देश में किन हालात में आज रह रहे हैं। जब तक हमें वो आंकड़े पता नहीं पड़ेंगे कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी कितनी मिली है, कितना कमाई कर रहे हैं, कितना लाभ उनको मिल रहा है, क्या स्कीम सरकार के वहाँ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, इस विषय में जो सबसे बेहतरीन काम हुआ है वो तेलंगाना सरकार ने किया है। तेलंगाना सरकार का जो सेंसस है वो बहुत समझदारी से किया गया है, विशेषज्ञों को उसमें ज्वाइन कराया गया है, और सरकार ने, किसी अधिकारी ने बैठ के नहीं किया है, उन्होंने NGO से प्राइवेट पार्टिसिपेशन कराया है, टेक्निकल लोगों को जोड़ा और एक बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सेंसस किया है।
जातीय जनगणना पर तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए भाजपा ने कांग्रेस के दुष्प्रचार की आलोचना की है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने भारत की जनगणना कराने का निर्णय लिया और इसके बाद जो भी प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनगणना के साथ सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन और जातियों की जनगणना भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगी। जिस संबंध में पहली प्रेस रिलीज 30 अप्रैल को हुई, दूसरी 4 जून को और 15 जून को, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया।
कांग्रेस पार्टी पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सुधांशु त्रिवेदी का कहना है,
वो पार्टी जिसने स्वतंत्र भारत में जातिगत गणना रुकाने का निर्णय लिया था, 1951 में किसने रोका था, जिसने पिछड़ों के हक को मारने के लिए काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट नहीं जारी होने दी, मंडल की रिपोर्ट नहीं जारी होने दी, वो अचानक आज आकर जो कहने का प्रयास करते हैं और जो लिखा हुआ भी है उसको नहीं पढ़ पाते हैं, मुझे लगता है इसके द्वारा उनकी राजनीति का तत्व सामने आ जाता।
भारत की विमानन नियामक संस्था DGCA ने एयर इंडिया के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में एयर इंडिया को विमानों की सुरक्षा, मेंटेनेंस और उड़ान संचालन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। 12 जून को एयर इंडिया विमान हादसे में लगभग 270 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद DGCA ने एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमानों की निगरानी शुरू की। जांच में कोई बड़ा खतरा सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि मंगलवार को एयर इंडिया ने 7 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया था, ज्यादातर में तकनीकी खामी बताई गई थी। इन 7 उड़ानों में से 6 उड़ानें ड्रीम लाइनर विमानों द्वारा संचालित होनी थी। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।